आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका अभिनंदन। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बात भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की। 1 जुलाई को जीएसटी ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में जीएसटी ने न केवल देश की कर व्यवस्था को एक नई दिशा दी है, बल्कि कारोबार करने के तरीके, कर संग्रह की प्रणाली और करदाताओं के अनुभव में भी बड़े बदलाव आए हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं आखिर क्या हैं, जीएसटी 2.0 के माध्यम से इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और कैसे इसने एमएसएमई और छोटे करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाया है। श्रोताओं, जीएसटी लागू होने से पहले देश में केंद्र और राज्यों के कई अलग अलग कर लागू थे। अलग अलग नियम, अलग अलग प्रक्रियाएं और टैक्स ऑन टैक्स जैसी व्यवस्था व्यापार और उद्योग के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती थी। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक कर की सोच के साथ 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के साथ केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों तथा 13 उपकरों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। समय के साथ सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को और सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। पिछले साल सितंबर में शुरू किए गए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब समझते हैं कि जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और जीएसटी 2.0 के माध्यम से क्या क्या बदलाव किए गए हैं।
जीएसटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये एक गंतव्य आधारित कर व्यवस्था है, यानी जिस राज्य में किसी वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग होता है उसी राज्य को उससे मिलने वाले कर का लाभ भी मिलता है। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66,50,000 थी, जो बढ़कर मई 2026 तक 1,65,00,000 हो गई है। ये इस बात का संकेत है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवसाय औपचारिक कर व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। सकल जीएसटी संग्रह भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में ये लगभग 7,40,000 करोड़ रुपए था। पिछले 5 वर्षों में ये 2021-22 के लगभग 13,76,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 22,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये वृद्धि 2026-27 में भी जारी है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान ही जीएसटी संग्रह लगभग 4,37,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। जीएसटी का संचालन जीएसटी परिषद के माध्यम से होता है। परिषद में केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर कर दरों और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी सहमति जताते हैं। इसे सहकारी संघवाद का एक सफल उदाहरण भी माना जाता है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य मिलकर कर व्यवस्था को समय समय पर बेहतर बनाने के लिए फैसले लेते हैं। जीएसटी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन की स्थापना की गई। जीएसटी 2.0 के तहत कर ढांचे को और सरल बनाने के किए गए हैं। पहले जहां अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर 5, 12, 18 और 28% के कई कर स्लैब लागू थे, वहीं इस सुधार के बाद अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर व्यवस्था को 5% और 18% के 2 प्रमुख स्लैब में व्यवस्थित किया गया है। वहीं तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय, अत्यधिक महंगी कारों, नौकाओं और निजी विमानों जैसी विलासिता तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर का प्रावधान किया गया है, ताकि राजस्व संतुलन भी बना रहे।
श्रोताओं, 9 वर्षों में जीएसटी ने केवल कर व्यवस्था को सरल बनाने का ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि देश में पारदर्शी डिजिटल और औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। विशेषज्ञ जीएसटी को भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार क्यों मानते हैं और इस पूरे बदलाव को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल किस तरह देखते हैं, आइए सुनते हैं।
पिछले एक दशक यानी करीब 12 से 13 वर्षों में भारत ने जो 2 सबसे बड़े आर्थिक सुधार देखे हैं, उनमें से एक जीएसटी है। जीएसटी ने देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। पहले नकद आधारित अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा औपचारिक व्यवस्था से बाहर था, वह अब धीरे धीरे कर व्यवस्था के दायरे में आ रहा है। यही कारण है कि जीएसटी संग्रह में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। आज जीएसटी केवल कर संग्रह का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि बल्कि यह सेंसेक्स, उपभोग, खुदरा माल ढुलाई, पीएमआई और डिजिटल लेनदेन जैसे कई आर्थिक संकेतकों का भी एक महत्वपूर्ण पैमाना बन चुका है। जब भी जीएसटी के आंकड़े आते हैं, उनसे यह पता चलता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार क्या है और उपभोग का स्तर कैसा है। इसलिए आज जीएसटी को देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है।
इकोनॉमिक बैरोमीटर।
श्रोताओं, बढ़ता हुआ जीएसटी संग्रह इस बात का भी संकेत है कि अधिक से अधिक लोग कर व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब कर प्रणाली सरल और सुविधाजनक हो। आइए जानते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत किए गए सुधारों ने छोटे कारोबारियों और एमएसएमई के लिए कर अनुपालन को किस तरह आसान बनाया है।
जीएसटी लागू होने के बाद समय समय पर ऐसे कई सुधार किए गए जिनका सबसे अधिक लाभ एमएसएमई, स्टार्टअप और छोटे करदाताओं को मिला है। सबसे पहले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा बढ़ाई गई। अप्रैल 2019 से वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए ये सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई। वहीं कंपोजिशन स्कीम की सीमा भी 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दी गई। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को कम दस्तावेजों और आसान रिटर्न व्यवस्था के साथ एक निश्चित दर पर कर चुकाने की सुविधा मिलती है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया। वर्ष 2020 में शुरू की गई QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट योजना के तहत 5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाता हर महीने रिटर्न दाखिल करने के बजाय हर तिमाही रिटर्न जमा कर सकते हैं। जिन करदाताओं का किसी महीने कोई कारोबार नहीं होता, वे केवल SMS के माध्यम से 0 रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स विक्रेताओं को भी राहत दी गई है। अक्टूबर 2023 से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ही राज्य में सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से छूट दी गई है। वहीं कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई। जीएसटी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भी लगातार काम हुआ है। जीएसटी एन पोर्टल, ई इनवॉइसिंग, पहले से भरे हुए रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्वचालित मिलन जैसी व्यवस्थाओं ने कागजी काम काफी कम किया है, गलतियों की संभावना घटी है और कर अनुपालन को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग भी किया जा रहा है। इनकी मदद से संभावित कर चोरी की पहचान अधिक सटीक तरीके से की जाती है। इससे ईमानदारी से कर चुकाने वाले कारोबारियों के लिए अनावश्यक जांच और अनुपालन का बोझ कम होता है, जबकि निगरानी का फोकस केवल उच्च जोखिम वाले मामलों पर ही रहता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
फिलहाल पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में जून महीने के जीएसटी संग्रह के आंकड़ों ने एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2026 में कुल जीएसटी संग्रह जून 2025 की तुलना में 13.9% बढ़ा है। घरेलू जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात पर जीएसटी संग्रह में 34.6% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 60,038 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन आंकड़ों का देश की अर्थव्यवस्था के लिए आखिर क्या महत्व है, इसी विषय पर आकाशवाणी समाचार ने आर्थिक मामलों के जानकार पुनीत जैन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी। ये सब चिंताओं के बीच में हमको जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है। वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है। अगर आप देखें, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि इस दौरान भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है, और कंजम्पशन जो है भारत में अभी भी अच्छी चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू।
तो श्रोताओं, आज जीएसटी केवल कर संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, औपचारिक अर्थव्यवस्था और व्यापारिक विश्वास का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए पारदर्शी, डिजिटल और भरोसेमंद आर्थिक व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। ऐसे में जीएसटी विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इसी के साथ श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।